आज की बात। श्रोताओं, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में हम वीरेंद्र देव दीक्षित नाम के ढोंगी बाबा की बात करेंगे। ढोंगी बाबाओं के मामले लगातार प्रकाश में आ रहे हैं और ये सूची लंबी होती जा रही है। इस लंबी सूची में एक नया नाम वीरेंद्र देव दीक्षित का जुड़ा है। इस ढोंगी बाबा का आश्रम दिल्ली के विजय विहार रोहिणी इलाके में पिछले 25 वर्षों से चल रहा था। आसपास रहने वालों को संदिग्ध गतिविधियों की कुछ भनक थी, लेकिन कुछ कह पाने की कोई स्थिति में नहीं था। इस आश्रम को आध्यात्मिक विश्वविद्यालय नाम से चलाया जा रहा था और आश्रम का खूब प्रचार किया जाता था। ढोंगी बाबा प्रवचन दिया करता था।
पांच विकारों में से मुख्य विकार कौन सा? काम विकार। वो सत्यगुण संपूर्ण नष्ट हो जाता है। काम माने इच्छा, काम माने क्या? कामना।
आश्रम की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली, भोपाल, मुंबई, हैदराबाद समेत 12 बड़े शहरों में इस आश्रम की शाखाएं हैं, लेकिन लोगों की शिकायतों से ये पता चला कि इनके अलावा भी कई शहरों में इस आश्रम की शाखाएं मौजूद हैं। कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, काठमांडू, मलेशिया, अमेरिका में भी इस आश्रम की शाखाएं होने की बात पता चली है। इलाके के लोगों का दावा है कि पिछले लगभग 22 वर्षों में कई बार पुलिस से बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित के आश्रम में गलत हरकतों की शिकायत की गई, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। एक पड़ोसी महिला ने यह भी बताया कि रात के समय लड़कियों को कारों में बिठाकर कहीं भेज दिया जाता था। उनके मुंह ढके होते थे और बैल्कनी को भी सफ़ेद चादर से ढांक दिया जाता था और हर तरफ सन्नाटा पसरा रहता था। महिला का कहना है कि कभी कभी लड़कियों के चीखने की आवाज़ें भी सुनाई देती थीं। एक पड़ोसी ने बताया कि जो माँ बाप खुद भक्त होते हैं, उन्हें अपनी बेटी आश्रम को समर्पित करने को कहा जाता है। यहाँ हर 2-3 महीने में कोई ना कोई केस ऐसा होता है जब पुलिस को आना पड़ता है, लेकिन इसके बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। एक पीड़िता ने मीडिया से बातचीत में अपनी आपबीती सुनाई।
वहाँ पर बाबा आते हैं, मुरली चलाते हैं, वो मुरली ब्रह्म कुमारियों के लेकर के पढ़ता है, डायरेक्ट वाणी नहीं चलाता है। फिर हम लोग उसको सुनते रहे, वहाँ रुके। जब बाबा वो आता था तो क्लास करके बस सीधा कमरे के अंदर जाता था जहाँ पर कन्याएं रहती थीं। तो कन्याओं के बीच में हमने वहाँ देखा कि बस वहीं सोता था कन्याओं के साथ, और भाइयों के साथ कभी नहीं रुका। भाइयों का अलग रहने का रूम है, जो सेवाधारी 2-4 दिन के लिए रुकते थे, लेकिन उनको सरेंडर नहीं करते थे। कहते थे मैं गाय पाल कन्हैया हूँ, मैं बैल पाल कन्हैया नहीं हूँ। जो माता कन्या है यहाँ अंदर आ जाओ, और बाहर में तुम लोगों की सेफ्टी नहीं है, अंदर में सेफ्टी है।
पीड़ितों में कुछ बच्चियां भी शामिल हैं। एक बच्ची ने बाबा की हैवानियत की दास्तान सुनाई।
जैसे टच करते थे इधर उधर, सब गंदी बातें करते थे। फिर मैं तो छुप, जब हमको बुलाते थे सब करने के लिए तो मैं तो भाग जाती थी, छुप जाती थी, तो हम बच जाती थी। और जो छोटी छोटी लड़कियां हैं वो भी ऐसे हमसे भी छोटी छोटी हैं, उनके साथ भी यही सब।
फाउंडेशन फॉर सोशल एम्पावरमेंट नाम की एक गैर सरकारी संस्था ने इस मामले में जनहित याचिका दाखिल की। संस्था के वकील ने बताया कि वीरेंद्र देव दीक्षित खुद को शिव का अवतार बताता है। नई आने वाली लड़कियों से एक रस्म करवाई जाती है जिसे वे भट्टी कहते हैं। इस रस्म के अनुसार लड़कियों को 7 दिन तक एकांत में रखा जाता है और तब आश्रम में भी किसी से मिलने की अनुमति उन्हें नहीं होती। जो लड़कियाँ ये रस्म पूरी करती हैं उन्हें फिर दूसरे शहरों के आश्रमों में भेज दिया जाता है। नाबालिग लड़कियों को फुसलाया जाता है कि वे उनकी गोपनीयता बनेंगी। जो लड़कियां अपने साथ यौन शोषण होने देती हैं उन्हें कहते हैं कि तुम मेरी 16,000 रानियों में से एक हो। बाबा पर अब तक अलग अलग थानों में 10 FIR दर्ज हो चुकी है। इनमें से अधिकतर बलात्कार के मामले हैं। ये शिकायतें 1998 से लेकर अब तक पुलिस थानों में दर्ज कराई गई। अलग अलग थानों में दर्ज 10 FIR के अलावा पुलिस की डायरी एंट्री में एक महिला की आत्महत्या का मामला भी दर्ज है। 7 दिसंबर 2016 को जीटीबी अस्पताल ने ये मामला दर्ज करवाया था। इस महिला ने आश्रम की छत से कूदकर जान दे दी थी। इसके अलावा 4 मार्च 2017 को एक महिला ने आश्रम में कथित तौर पर फांसी लगाई। इस केस की जांच के दौरान आश्रम की महिलाओं ने उस पर भूत प्रेत का साया होने की बात कही, लेकिन इस जांच का नतीजा सामने नहीं आ सका। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य सुषमा साहू ने बताया कि वहां से बच निकलने में सफल कुछ लड़कियों से वो मिल चुकी हैं और उनके बयान भी उन्होंने दर्ज किए। पीड़ितों से बात करने के बाद पता चला कि लड़कियों को हार्मोन बढ़ाने वाली दवाइयां दी जाती हैं ताकि उनसे यौन संबंध बनाए जा सकें। उन्हें कानपुर की एक 13 साल की बच्ची ने बताया कि उसे राजस्थान ले जाकर उसका यौन शोषण किया गया और विरोध करने पर उसे मारा पीटा गया। सुषमा साहू ने बताया कि ये बाबा अलग अलग पहचान पत्रों के साथ घूमता है और छानबीन करने वालों को धमकाता भी है। बहरहाल लंबे प्रयासों के बाद अदालत के आदेश पर सीबीआई और पुलिस ने 8 घंटे तक आश्रम में जांच की और 41 नाबालिग लड़कियों को वहां से छुड़ाया। वीरेंद्र दीक्षित को हाईकोर्ट ने अदालत में पेश होने के लिए कहा, लेकिन वो फरार हो गया। बाबा के कई आश्रमों पर पुलिस ने छापे मारे। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने मीडिया को आश्रम के अंदर का हाल बताया।
जैसे ही हम अंदर घुसे तो मैं बिल्कुल हैरान रह गई कि एक गेट के बाद फिर एक मेटालिक गेट, फिर एक मेटालिक गेट, हर 3 कदम के बाद एक मेटल का वहां पे गेट था जिसके ऊपर बड़ा बड़ा ताला लग गया। मतलब 2.5 घंटे लग गए हमें एक एक ताला खुलवा कर, तुड़वा कर किसी तरीके से हम महिलाओं तक पहुंचे। 2.5 घंटे हमें सारे गेट्स खुलवाने में ही लग गए। जब हम वहाँ पे महिलाओं से मिले और वहाँ पे हमने जहाँ इंस्पेक्शन करना शुरू करा तो हमने देखा कि ये तो पूरा एक जैसे भूल भुलैया बना रखी है। सुरंगें हैं छोटी छोटी, अलग अलग दरवाजे हैं, एक कमरे में कहीं से एंट्री पॉइंट है, कहीं से एग्जिट पॉइंट है, पूरी भूल भुलैया बना रखी है जिसमें हर कदम के ऊपर एक गेट है और ताले लगे हुए हैं। हम जब वहाँ पे इंस्पेक्शन करने लगे तब हमने देखा कि ऐसे हमें सूटकेसेस मिले जिसमें पत्र ही पत्र भरे हुए हैं। ये पत्र लड़कियों से बाबा को लिखवाए गए हैं और इनमें यौन शोषण की कितनी गंदी गंदी बातें हैं कि मैं बोल भी नहीं सकती। साथ ही इतनी सारी दवाइयां थी वहां पे, मतलब कमरे भर भर के दवाइयां हैं और ये लड़कियां जो हैं इन्हें पता नहीं क्या खिलाया जा रहा है, क्या पिलाया जा रहा है। जब हम इंस्पेक्शन कर रहे थे तो इन लड़कियों को कुछ लिक्विड पिलाया जा रहा था। वो लिक्विड जैसे ही हम लोग घुसे तो मैंने भी वो लिक्विड थोड़ा सा पिया, लेकिन मुझे वो ठीक नहीं लगा, मैंने उसको एकदम निकाला। लेकिन वो लिक्विड जितना मेरे अंदर गया उसकी वजह से 1.5 घंटे तक मुझे खुद चक्कर आता रहा और मैं मतलब बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब रही। ये बिल्कुल साफ है क्योंकि जब उन लड़कियों से बात करो, उन महिलाओं से बात करो तो ऐसा लगता है किसी और ही दुनिया में है। इनको ज़रूर कुछ ना कुछ खिलाया जा रहा है, कुछ पिलाया जा रहा है और मुझे ये समझ नहीं आता कि पिंजरे में क्यों रखा गया है। उस पिंजरे की हालात ये है कि तिहाड़ जेल की भी बेहतर हालत होगी। ऐसी स्थिति कर रखी है, बार्ब वायर्स लगा रखे हैं, जंगले बना रखे हैं, टनल्स हैं, इतना बुरा हाल है कि अगर कोई लड़की सुसाइड भी करना चाहे ना तो वो भी सुसाइड नहीं कर सकती। इसी जगह पे रेप की एलिगेशन है बाबा के खिलाफ, सुसाइड एक लड़की ने करा था वो भी एलिगेशन है, और आसपास जितने भी लोग रहते हैं सबकी डीडी एंट्रीज हैं पुलिस में, लोकल पुलिस थाने में, जिसमें वो बताते हैं कि पूरी रात यहाँ पे लड़कियां अंदर आती हैं, बाहर जाती हैं गाड़ियों के द्वारा, 10-10, 12-12 गाड़ियां रोज रात में कभी अंदर आ रही हैं, कभी बाहर जा रही हैं। जिस रात हमने इंस्पेक्शन करी वहां पे तब उस रात भी 5 गाड़ियां बेसमेंट में पार्क्ड थी, बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, कोई चंडीगढ़ का नंबर था, कोई और स्टेट का नंबर था। तो ये इस तरीके से रैकेट चल रहा है, एक सेक्स रैकेट चल रहा है, ये वहां के लोकल लोगों का भी बार बार उनके आरोप रहे हैं।
वहीं इतने सारे रहस्य सामने आने और भयानक मामलों का पर्दाफाश होने के बाद भी कुछ लोग हैं जिन्हें ढोंगी बाबा पर विश्वास है।
यहाँ पे पहले जैसे हमें संदेश मिला था कि भाई यहाँ पे शिव पिता का पाठ चला शंकर जी के तन से, जैसे ब्रह्मा बाबा के तन में शिव पिता का पाठ चला माँ के रूप में, ऐसी बाबा के भ्रकुटी के बीच में शिव पिता का पाठ चला पिता के रूप में। फिर हम यहाँ पे आए तो हमने 7 डेज कोर्स किया, फिर कोर्स करने के बाद फरुखाबाद भट्टी करके आए शिव बाबा गाड़ी में बैठ के सब माताएं, तो भट्टी करने के बाद फिर हम यहाँ पे जब से रेगुलर क्लास कर रहे हैं। हाँ, बाबा की भ्रकुटी जो मैंने महसूस किया शिवपिता को।
यही सबसे बड़ी समस्या है। लोगों में अंधविश्वास की समस्या का एक बहुत बड़ा कारण धार्मिक व आध्यात्मिक मामलों की सही शिक्षा का अभाव है। लोगों की सादगी और ज्ञान की कमी का लाभ उठाकर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अलग अलग भेष में शोषण करते हैं। चूंकि लोगों के बीच उनकी पैठ होती है, इसलिए अनेक अवसरों पर यह भी देखा गया कि राजनीतिक दल भी वोट के लालच में बाबाओं को खुश करने की कोशिश करते हैं। आसाराम और राम रहीम जैसे अपराधियों के मामले में ये तथ्य सामने आ चुके हैं। इस गंभीर समस्या का समाधान कैसे होगा, इस बारे में कुछ कह पाना कठिन है, लेकिन परिवारों के लिए बहुत जरूरी है कि अपने बच्चों के भविष्य के बारे में किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास न करें, आंखें खुली रखें।